डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 20 अधिनियम 18 से 20 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम अध्याय 18 से 20 पर सत्र 20 है। याद रखें कि पॉल ने कुरिंथ में आराधनालय को विभाजित कर दिया था क्योंकि वह अगले अध्याय में इफिसुस में आराधनालय को भी विभाजित करने जा रहा है। इसका मतलब है कि समुदाय विभाजित था। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन्हें अंततः एहसास हुआ कि उससे छुटकारा पाने का कोई अन्य तरीका नहीं था। इसलिए वे उसे अखाया के नए हाकिम गल्लियों के सामने ले आए और उस पर व्यवस्था के विरुद्ध काम करने और बोलने का दोष लगाया। अब तकनीकी रूप से यह उनका विचार था कि वह यह उनके कानून के विपरीत कर रहा था। हो सकता है कि उन्होंने इसे अस्पष्ट रूप से लिखा हो ताकि ऐसा लगे कि यह रोमन कानून के विरुद्ध है। लेकिन किसी भी मामले में वे चाहते होंगे कि अगर यह उनके कानून के खिलाफ था तो उसे यहूदी समुदाय से अलग कर दिया जाए। यदि ईसाई धर्म, यदि ईसाई आंदोलन, यदि यह तर्क दिया जा सकता है कि यह यहूदी नहीं था तो इसे अब रोमन कानून के तहत उसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलेगी। यहूदी धर्म तकनीकी रूप से वह नहीं था जिसे कुछ लोगों ने रिलिजियो लिसिता कहा है, अर्थात यह तकनीकी रूप से वह नहीं था जिसे आप कानूनी धर्म कहते हैं। लेकिन इसकी प्राचीनता के कारण इसे एक सम्मानजनक सम्मानित धर्म माना जाता था। यदि ईसाई आंदोलन को इससे अलग माना जाता तो यह बहुत मुश्किल होता क्योंकि यह पूरी तरह से उन्हीं धर्मग्रंथों पर आधारित था जिन पर यहूदी धर्म आधारित था। लेकिन अगर यह तर्क दिया जा सकता है कि यह एक अलग धर्म था तो इसे एक नए पंथ के रूप में देखा जा सकता है और इसलिए यह रोमन साम्राज्य की स्थिरता के लिए खतरा है। तो आप पर थिस्सलुनीके में मायस्टास राजद्रोह का आरोप था और अब यह एक अलग तरह की कानूनी रणनीति है। पॉल ने ईसाई आंदोलन को सच्चा यहूदी धर्म होने का दावा किया जो बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने कहा था उसकी सच्ची पूर्ति है। जिस तरह से उस पर यहूदी धर्म से अलग होने और उनके कानून के विपरीत होने का आरोप लगाया जा रहा था उसके विपरीत गैलीलियो ने इसे एक यहूदी संप्रदाय माना और उन्होंने कहा कि यह एक आंतरिक यहूदी मुद्दा माना जाता है। यहूदी लोगों को शहरों में रहने वाले एलियंस के अन्य समूहों की तरह उनका अपना समुदाय माना जाता था जहां वे अपने आंतरिक मामलों का न्याय कर सकते थे। लेकिन जब रोमन कानून की बात आती है तभी रोमन हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, आपको यह स्वयं देखना होगा, यह मेरा मामला नहीं है। तो इस मामले में यह पीलातुस की तरह नहीं है जो ल्यूक अध्याय 23 से प्रभावित था। इसके बजाय यह एक ऐसा मामला है जहां राजनीतिक मुद्दों के विपरीत रोमन कानून और रोमन न्याय का वास्तव में पालन किया जाता है। और ऐसा आंशिक रूप से इसलिए हो सकता है क्योंकि कोरिंथ में यहूदी समुदाय के पास उतनी राजनीतिक ताकत नहीं थी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गैलीलियो को यहूदी समुदाय पसंद नहीं था और क्लॉडियस के निष्कासन के कारण निश्चित रूप से रोम के भीतर उनकी एक मिसाल थी। तो 18:14 में आप जानते हैं यहूदी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए यहूदी हमेशा रोम में अपील कर सकते थे। लेकिन इस मामले में गैलीलियो का निर्णय यह है कि वे बस नहीं थे, यह केवल एक यहूदी मुद्दा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे इससे आगे ले जाया जा सके। गैलीलियो का निर्णय थिस्सलुनीके या कहीं और के राजनेताओं के स्थानीय निर्णय के विपरीत गैलीलियो का निर्णय केवल स्थानीय नहीं होगा क्योंकि वह गवर्नर था और इसलिए यह नीरो के समय तक रोमन अदालतों में सर्वोच्च मिसाल कायम करेगा और नीरो के समय के बाद नीरो बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित नहीं था लेकिन दुर्भाग्य से उसने कुछ मिसालें कायम की जिससे उत्पीड़न हुआ। अधिनियम 18 पद 16 और 17। पॉल पर आरोप लगाने वालों का क्या होता है? ऐसा लगता है कि पॉल की जगह उन्हें पीटा गया है। डोमिनिटियन ने जोसीफस के अपने ही आरोपियों, जोसीफस के यहूदी आरोपियों को दंडित किया। एक सम्राट ने उन सामरियों को मार डाला जिन्होंने यहूदी नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए थे। यूनानी विशेष रूप से यहूदी विरोधी और यहूदी विरोधी थे, हालांकि यदि आप फ्लैकस इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं तो वे अलेक्जेंड्रिया के यूनानियों की तुलना में कम थे। लेकिन एक और संभावना है, शायद यहूदी समुदाय अपने ही नेता के विरुद्ध आराधनालय अनुशासन का प्रयोग कर रहा था। जो भी मामला हो, सोस्थनीस को पीटा जाता है, चाहे यह यूनानियों की गुस्साई भीड़ द्वारा हो जिसे गवर्नर आसानी से नजरअंदाज कर देता है, या फिर यह आराधनालय समुदाय के सदस्य अपने ही नेता को इसमें शामिल करने के लिए पीट रहे हों। हालांकि यह दिलचस्प है कि नेता का नाम, यह कोई वास्तविक सामान्य नाम नहीं है, सोस्थनीस पॉल के एक पत्र में कोरिंथियंस को पत्र के सहप्रेषक के रूप में दिखाई देता है, और इसलिए इससे पता चलता है कि वह आस्तिक बन गया। वह या तो इस बिंदु पर पहले से ही आस्तिक था या बन गया। और ल्यूक वास्तव में यह स्पष्ट नहीं करता कि यहां जो चल रहा है उसका विवरण क्या है। अध्याय 18 श्लोक 24 से अध्याय 19 और श्लोक 7 तक। और यहां मैं गति बढ़ाने जा रहा हूं। यहां अपुल्लोस की तुलना जॉन के अन्य अनुयायियों से की गई है। अपुल्लोस को यीशु के तरीके पूरी तरह से सिखाए गए हैं। और फिर वह इफिसुस से कोरिंथ जाता है और वहां सार्वजनिक रूप से बहस करता है और वास्तव में एक अच्छा सार्वजनिक बहसकर्ता, वास्तव में अच्छा सार्वजनिक वक्ता है, जैसा कि आप एक कुरिंथियों से भी देखते हैं। अपुल्लोस को यीशु के बारे में और अधिक सिखाने के बाद उसका पुनः बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ, जिस प्रकार 19:1-7 में जॉन के अन्य अनुयायियों का पुनः बपतिस्मा हुआ है। खैर, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बैप्टिस्ट थे और वह एंग्लिकन था। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 18:25 में, ठीक है, मैं यही सोचता हूं, 18:25 में वह आत्मा में उत्साही थे। इसका अनुवाद किया जा सकता है और टिप्पणीकार इस पर विभाजित हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि वह अपनी आत्मा में उत्साही थे। लेकिन ल्यूक के सामान्य उपयोग को देखते हुए और यहां तक कि रोमियो अध्याय 12 में थोड़ा समानांतर उपयोग को देखते हुए, मुझे लगता है कि शायद इसका मतलब यह है कि वह आत्मा में, भगवान की आत्मा में, पवित्र आत्मा में उत्साही था और इसलिए उसे पहले ही आत्मा प्राप्त हो चुका था। हो सकता है कि वह यीशु के बारे में ज्यादा नहीं जानता हो, लेकिन वह काफी जानता था और उसे आत्मा प्राप्त हुई थी। जॉन के इन अन्य अनुयायियों के मामले में दोनों ने जॉन का बपतिस्मा प्राप्त किया था। उन्होंने अध्याय 19:2 में कहा, हमने तो यह भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा है या नहीं। अर्थात क्या पवित्र आत्मा पहले से ही उपलब्ध है? मेरा मतलब है, अगर वे यहूदी धर्म के बारे में कुछ भी जानते थे तो वे जानते थे कि एक रूह कोदेश एक पवित्र आत्मा थी, और जॉन के शिष्यों के रूप में वे कम से कम पवित्र आत्मा में आने वाले बपतिस्मा के बारे में जॉन की भविष्यवाणी को जानते होंगे। परंतु वे स्पष्टतः नहीं जानते थे कि आत्मा बपतिस्मा देने वाला आया है। तो पॉल उन्हें यह समझाता है, उनके मामले में उन्होंने अभी तक आत्मा प्राप्त नहीं किया है, जब तक कि पॉल उन्हें बपतिस्मा नहीं देता, उन पर हाथ नहीं रखता, और तब उन्हें आत्मा प्राप्त नहीं होती। यूहन्ना का बपतिस्मा अपुल्लोस के लिए पूर्वव्यापी रूप से गिना गया क्योंकि उसके पास पहले से ही आत्मा थी, इसलिए उसे दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उन्हें जॉन के बपतिस्मा से अधिक विशेष रूप से ईसाई बपतिस्मा की ओर जाना पड़ा। और फिर जब वे आत्मा से भर गए, और फिर इफिसुस में बहुत से पानी के स्थान थे, परंतु वे आत्मा से भर गए, और पौलुस ने उन पर हाथ रखे, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वाणी करने लगे। फिर आत्मा प्रेरित आत्माशक्त बोलने पर यह जोर कि अब इतनी जल्दी भी मिशन में शामिल होने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा। अब विचार का विभाजन है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शिष्य जो जॉन के बपतिस्मा को जानते थे ईसाई शिष्य थे, और कुछ सोचते हैं कि वे सिर्फ जॉन के शिष्य थे, और यह विभाजित है। मुझे लगता है कि हम में से थोड़ा सा बहुमत सोचता है कि वे जॉन के शिष्य थे और वे अभी तक परिवर्तित नहीं हुए थे। लेकिन यह बहस का एक और मुद्दा है, इसलिए मैं बाकी अधिनियमों के लिए तेजी से काम कर रहा हूं और अधिनियम 19 की ओर आगे बढ़ रहा हूं। श्लोक 9, टायरानस का विद्यालय। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ का स्कूल अपने संरक्षक के नाम पर एक गिल्ड हॉल हो सकता है। यह एक संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश विद्वान सोचते हैं, जिसमें वह विद्वान भी शामिल है जिसने मूल रूप से प्रस्तावित किया था, कि अधिकांश विद्वान सोचते हैं कि यह एक व्याख्यान कक्ष था, और व्याख्यान कक्ष का नाम टायरानस के नाम पर रखा गया। टायरानस मालिक जमींदार हो सकता था, या वह व्याख्याता हो सकता था, और टायरानस संभवतः एक उपनाम है। यह इफिसस में कुछ अन्य बार दिखाई देता है, लेकिन यह संभवतः एक उपनाम है, जिसका अर्थ शायद यह है कि यह व्यक्ति एक वास्तविक अत्याचारी था। यदि वह एक व्याख्याता होता, तो वह उन शिक्षकों में से एक की तरह होता कि यदि आप उस प्रोफेसर को लेने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप कड़ी मेहनत करें, है ना? तो वैसे भी शायद इओनिया में काम करने के सामान्य तरीकों को देखते हुए, जिसमें इफिसस भी शामिल था, शायद वह हॉल के साथ काम कर चुका था, या जो कोई भी इसका उपयोग कर रहा था वह सुबह 11 बजे से पहले किया गया था, तभी आयोनियन शहरों में सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया था। पॉल ने संभवतः सुबह 11 बजे तक अपना शारीरिक श्रम किया और उसके बाद दोपहर में स्कूल जाता था इत्यादि। लोग आम तौर पर दोपहर के आसपास आराम करने, सोने, बस थोड़ी सी झपकी लेने, खाने या कभी कभी दोनों समय बिताते हैं। इसीलिए अधिनियम 26 में जब आप देखते हैं कि पॉल दोपहर के समय यात्रा कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वह अपने मिशन को काफी जरूरी मानता था। खैर, पॉल यहाँ एक भावना से भरे शिक्षक का एक आदर्श है। वह पढ़ाता है, वह शिक्षण के लिए उन स्थानों का उपयोग करता है जो उसकी संस्कृति में पहले से ही उपलब्ध थे। वह एक व्याख्याता के रूप में बोलते हैं, कुछ हद तक एक ईसाई दार्शनिक की तरह, क्योंकि लोग आते थे और दार्शनिकों की बात सुनते थे। तो उसके पास अपने स्वयं के छात्र होंगे, और फिर यदि वे चाहें तो अन्य लोग आ सकते हैं और सुन सकते हैं, और उन्होंने शायद ऐसा किया भी, और इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा था। इसका सीधा असर इफिसस पर पड़ रहा था, लेकिन कुछ लोग इफिसस से बाहर भी जा रहे थे। प्रभु का वचन उस पूरे क्षेत्र में फैल रहा था, एशिया के पूरे रोमन प्रांत में, जो रोमन साम्राज्य के सबसे धनी प्रांतों में से एक था। इफिसस एशिया के रोमन प्रांत, एशिया माइनर का सबसे प्रमुख शहर था, और इसलिए हमने पढ़ा कि उसके माध्यम से चमत्कार भी हो रहे थे। यह पढ़ा रहा था, यह चमत्कारों का मंत्रालय भी था, और यहाँ ऐसा लगता है कि यह उसी स्तर पर आ गया है जो अधिनियम 5 में था। इस वजह से होने वाले चमत्कारों और भूत भगाने की प्रक्रियाओं के कारण कुछ यहूदी ओझा निर्णय लेते हैं, ठीक है, चलो उसका अनुकरण करें, आइए वही करें जो उसने किया। यहूदी भूत प्रेत भगाने की तकनीकों का उपयोग अक्सर राक्षस को बाहर निकालने और राक्षस को भगाने के लिए बदबूदार जड़ या किसी प्रकार की वास्तव में दुर्गंध की तरह किया जाता था। आपके पास वह टोबिट में है। मुझे विश्वास है कि आपने इसे जोसेफस एंटिकिटीज 8 में भी प्रमाणित किया है। इसके अलावा यहूदी भूत प्रेत भगाने की तकनीकों में नाम का आह्वान किया जाता था। इसलिए उदाहरण के लिए पुरावशेष 8 में कोई व्यक्ति सुलेमान की जादुई अंगूठी का उपयोग करता है और कथित तौर पर सुलेमान के नाम पर आत्माओं को बाहर निकाल रहा है। आरंभिक ईसाई यीशु के नाम पर आत्माओं को बाहर निकालते थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि वे यीशु द्वारा अधिकृत थे। कोई व्यक्ति जो वास्तव में यीशु द्वारा अधिकृत नहीं है, उसके पास वास्तव में वह अधिकार नहीं है, उसके पास वास्तव में उस नाम का उपयोग करने की क्षमता नहीं है। पॉल यीशु का शिष्य था। मैं मूल शिष्यों में से एक नहीं हूं। मैं शिष्य का उपयोग इस अर्थ में कर रहा हूं कि इसका उपयोग अधिनियमों में यीशु के अनुयायियों के आंदोलन के लिए किया जाता है, परंतु स्केवा के साथ पुत्र नहीं थे। स्केवा एक लैटिन नाम था और कहा जाता है कि वह एक यहूदी मुख्य पुजारी था। जोसेफस ने बहुवचन में उच्च पुजारियों या मुख्य पुजारियों आर्चियरियस का उपयोग किया, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या यह व्यक्ति आम तौर पर किसी कुलीन पुरोहित परिवार से था या उसे यूं ही कहा गया था। यह सिर्फ एक दावा था कि उसने अपने अनुयायियों का उपयोग करने के लिए और अधिक लोगों को भर्ती करने के लिए कहा था, या शायद वे उसके शाब्दिक पुत्र थे। इसे किसी भी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन यह आपको ल्यूक अध्याय 11 के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां यीशु कहते हैं, तुम्हारे अपने बेटे उन्हें किसके द्वारा निकाल देते हैं? और उस स्थिति में यीशु कहते हैं, मैं उन्हें बालजेबुल द्वारा बाहर नहीं निकाल रहा हूं। इस कथा में उनके बेटे उन्हें बाहर निकालने में सक्षम साबित नहीं होते हैं। वास्तव में इसकी विडंबना यह है कि यह वह राक्षस नहीं है जिसे बाहर निकाला जाता है, ओझाओं को ही भगाया जाता है। किसी भी मामले में यहूदी जादू में समन्वयवाद आम था, जहां यह पारंपरिक जादू को एक साथ मिश्रित करता था और सर्वोच्च भगवान के सर्वोच्च नाम का उपयोग करने का प्रयास करता था। कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, यह सोचकर कि वे यहूदी जादुई प्रथाओं से सीख सकते हैं। फिर यह बहुसंख्यक यहूदी लोग नहीं हैं, बल्कि केवल अल्पसंख्यक हैं जो जादू का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वे प्राचीन काल में सबसे अधिक प्रशंसित लोगों में से थे। खैर, हमने अधिनियमों में इसे कई बार देखा है। मेरा मतलब है, आप शमौन जादूगर अधिनियम अध्याय 8 सामरिया में मिले हैं, यहूदी नहीं लेकिन उसके करीब। हमने एक्ट अध्याय 13 में एलिमास बार जीसस को देखा है, और अब हमारे पास ये यहूदी ओझा हैं जो ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जो मुख्य धारा के यहूदी धर्म, कम से कम यहूदिया और गलील में, स्वीकृत नहीं होंगे। और मुद्दा यह प्रतीत होता है, देखो आप हम यीशु के अनुयायियों के बारे में शिकायत करना चाहते हैं जो चमत्कार करने वाले हैं, आप इन लोगों के बारे में शिकायत क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वास्तव में धर्मग्रंथ का अनुसरण कर रहे हैं, हम इस प्रकार की प्रथाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी भी मामले में झाड़फूंक आम बात बनी रही। हालांकि यीशु के अनुयायियों द्वारा यीशु के नाम पर भूत प्रेत भगाने की क्रियाएं भूत प्रेत भगाने के अन्य प्रयासों की तुलना में इतनी प्रभावी थीं कि चौथी शताब्दी तक ईसाई धर्म में रूपांतरण का प्रमुख कारण भूत प्रेत भगाने और उपचार करना था। अब राक्षसों को बाहर निकालने के लिए नाम का उपयोग, वे इन आत्माओं को बाहर निकालने के लिए यीशु के नाम का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे सफल नहीं हैं क्योंकि राक्षस आदमी से बात करता है और कहता है, मैं यीशु को जानता हूं। मैंने पॉल के बारे में सुना है, लेकिन आप कौन हैं? दूसरे शब्दों में, आप इस नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। और वह बता सकता है, और वह उन पर कूद पड़ा और जाहिरा तौर पर उनमें से एक दो के कपड़े फाड़ दिए, जिससे वे शर्मनाक तरीके से नग्न हो गए और वे भाग गए। आपको यह भी याद होगा कि यीशु ने क्या कहा था कि वह कैसे राक्षसों को बाहर निकाल रहा है, और यह पीढ़ी उन्हें 7 गुना अधिक में वापस आमंत्रित करने जैसी है, इसलिए वह उनका पीछा करता है। और प्रभु यीशु के नाम पर फैलाई गई बात को महिमामंडित किया गया, क्योंकि लोगों को एहसास हुआ कि प्रभु यीशु का नाम निचली आत्मा को नियंत्रित करने के लिए उच्च आत्मा के नाम जैसा नहीं था। प्रभु यीशु का नाम कोई जादुई सूत्र नहीं था। प्रभु यीशु का नाम उनके सच्चे अनुयायियों के लिए प्राधिकार था। और शायद इसीलिए जब पॉल ने बाद में इफिसुस को पत्र लिखा तो विद्वानों के बीच मतभेद हो गया, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो सोचते हैं कि पॉल ने इफिसियों को पत्र लिखा था। इफिसियों अध्याय 1 में वह लोगों को लिख रहा है। संभवतः इसमें केवल इफिसस ही शामिल नहीं था, बल्कि इफिसस के आसपास का क्षेत्र भी शामिल था, लेकिन निश्चित रूप से इफिसस उन शहरों में से एक था जिसे विशेष रूप से एशिया के रोमन प्रांत के संदर्भ में संबोधित किया गया था। वह ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो अक्सर गुप्त पृष्ठभूमि से आते हैं। वे इन आध्यात्मिक शक्तियों से डरते हैं, और पॉल उन्हें याद दिलाता है कि मसीह को हर रियासत और शक्ति, हर नियम और अधिकार से ऊपर उठाया गया है। वह कहता है, और हर नाम जिसे नाम दिया गया है, हर नाम जिसे बुलाया जाता है, यीशु का नाम ऊंचा है। और इसीलिए वह यह कह सकता है कि हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर सिंहासन पर बैठाया गया है जो इन शक्तियों से बहुत ऊपर हैं। हमें इन आध्यात्मिक शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, इसके परिणाम स्वरूप कई लोग अपनी जादुई किताबें साथ ले आए जिनका उपयोग वे आत्माओं को वश में करने आदि के लिए कर रहे थे, और यह कहता है कि उन्होंने अपनी प्रथाओं को कबूल कर लिया। खैर, कुछ विद्वानों ने नोट किया है कि भले ही शब्दांकन का यह मतलब नहीं है, संभवतः इसमें उनके मंत्रों को प्रकट करना शामिल है, क्योंकि शब्दांकन निश्चित रूप से प्राचीन स्रोतों में शामिल हो सकता है। मंत्रोच्चारण ने जादुई मंत्रों को उनकी शक्ति से वंचित कर दिया, कम से कम यही विश्वास था। इसलिए वे अपनी जादुई किताबों के साथ आते हैं और उन्हें जला देते हैं। खैर, प्राचीन काल में किताबों को जलाने का इस्तेमाल अक्सर उनकी सामग्री को अस्वीकार करने के लिए किया जाता था। तो यह लोगों का एक तरीका है कि हम अब इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते, हम सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए इफिसुस पर पॉल का प्रभाव व्यापक था। इसका असर पूरे समुदाय पर पड़ रहा था। जितनी किताबें जलाई गईं, सार्वजनिक रूप से जलाई गईं, वह रकम 50,000 ड्रैकमास या एक औसत कृषि श्रमिक के लिए लगभग 50,000 दिनों की मजदूरी थी। वह बहुत सारी जादुई किताबें जलाई जा रही थीं, और इसने संभवतः एक बड़ा सार्वजनिक दृश्य बना दिया। कुछ लोगों का तर्क है कि ये वास्तव में किताबें नहीं हैं, बल्कि ये इफेसिया ग्रामाटा हैं। ये जादुई पपीरी मंत्र या प्रतिमंत्र थे जो छोटे सिलेंडरों या गले में या कहीं और ताबीज के रूप में पहने जाने वाले लॉकेट में लपेटे जाते थे। इफेसिया ग्रामाटा, यह शब्द अक्सर कई विद्वानों द्वारा जादुई फार्मूलों के साथ जोड़ा गया है जिनका उपयोग इस तरह किया जा सकता है। इसलिए चाहे वे पपीरस के छोटे टुकड़े हों या जादुई पपीरी हों या वे कुछ बड़े हों, किसी भी तरह से लोग इसकी सामग्री को अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा संघर्ष स्थानीय धर्म के साथ आकर खत्म होता है। इस मामले में पुजारी से लेकर स्थानीय धर्म तक नहीं, बल्कि आर्थिक कारणों से, क्योंकि यह लोगों के व्यवसाय में कटौती कर रहा है। इफिसस की आर्टेमिस, श्लोक 24-27। कुछ लोगों ने उसके स्तनों और मूर्तियों पर बलबनुमा उपांगों के कारण सुझाव दिया है कि इफिसस की आर्टेमिस एक प्रजन देवी थी। कुछ लोग उसकी तुलना इफिसस की पवित्र यूनानी आर्टेमिस से करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि बल्बनुमा उपांगों का मतलब है कि उसके बहुत सारे स्तन हैं या वे किसी प्रकार के प्रजनन अंडे हैं या प्रजनन क्षमता को दर्शाने वाली कोई चीज है। हालांकि वहां कुछ इस तरह की ज़ियूस की मूर्ति भी है जिससे पता चलता है कि यह वैसा नहीं रहा होगा। मुझे यह चुटकुला पसंद आया कि शायद उसे एक त्वचा विशेषज्ञ की जरूरत थी। लेकिन किसी भी मामले में साहित्यिक स्रोतों में वह अभी भी कुंवारी शिकारिका है। वह बिल्कुल भी प्रजनन क्षमता की देवी नहीं है। और हमारे पास मौजूद सभी स्रोत जो संभवतः प्राचीन काल की कलाकृति की व्याख्या कर सकते हैं सुझाव देते हैं कि नहीं, वह अनातोलिया के आंतरिक भाग की देवी नहीं है। वह सिर्फ आर्टेमिस है, मूल रूप से ग्रीक आर्टेमिस, लेकिन इफिसस में एक प्रसिद्ध तरीके से। श्लोक 35 में शहर का क्लर्क आर्टेमिस की मूर्ति के बारे में स्वर्ग से गिरी हुई मूर्ति के रूप में बात करता है। तो कुछ ने सुझाव दिया है कि शायद यह एक उल्कापिंड है। लेकिन ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्राचीन काल में स्वर्ग से गिरी थीं और वे उल्कापिंड नहीं थे। स्वर्ग की इन कथित मूर्तियों में से कई बस लोगों द्वारा बनाई गई थीं। तो यह भी वैसा ही रहा होगा। और इसके अलावा यह दिलचस्प है कि इफिसुस में हालांकि कई मूर्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे स्वर्ग से गिरी थीं, हम इसके बारे में कहीं और नहीं पढ़ते हैं। तो शहर का क्लर्क कह रहा है, यह देखकर कि ये बातें निर्विवाद हैं और ल्यूक के श्रोता हंस रहे हैं, हाँ हाँ ये बातें बहुत नकारने योग्य हैं। लेकिन किसी भी मामले में उनकी प्रतिमा प्रसिद्ध थी। वहां बहुत सारी लघु मूर्तियां थीं जो बड़ी मूर्तियों की नकल करने के लिए बनाई गई थीं। उनका मंदिर प्राचीन दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक था। यह जेरूसलम मंदिर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह बहुत थे क्योंकि वे केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे। तो इसने सात अजूबे बनाए और यरूशलेम मंदिर ने नहीं। इसकी गणना अक्सर की जाती है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या गणना करते हैं, संपूर्ण आधार या मंदिर, लेकिन इसकी गणना अक्सर 420 फीट एक्स 230 फीट पर की जाती है। वह 130 मीटर गुना 70 मीटर है। यह एथेंस के प्रसिद्ध एथेना मंदिर पार्थेनन से लगभग चार गुना बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है। यह शहर में उचित नहीं था। एक रास्ता था जिसे आप अपना सकते थे, मंदिर के किनारे तक जाने वाला एक पवित्र रास्ता शहर से लगभग 1.5 मील या 2.4 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। उनके पास आर्टेमिस को समर्पित एक विशेष महीना था और आर्टेमिस को समर्पित विशेष त्योहार थे जिसमें उसका जन्म, अनुमानित जन्म तिथि इत्यादि शामिल थे। और यह इफिसुस की आर्टेमिस है जिसकी समस्त एशिया और संसार पूजा करता है। 1927। खैर, भले ही आर्टेमिस ग्रीक आर्टेमिस की पूजा हर जगह की जाती थी, आर्टेमिस का विशेष रूप से इफिसियन संस्करण वास्तव में दुनिया भर में भी पूजा जाता था। ज्ञात दुनिया में 30 से अधिक स्थान हैं, ऐसे स्थान जिनके बारे में हम जानते हैं जहां विशेष रूप से इफिसियन आर्टेमिस की पूजा की जाती थी, न कि सामान्य रूप से केवल आर्टेमिस की। मिशनरियों ने पंथ का प्रसार किया। अब अक्सर ये व्यापारी होते थे और उन्हें आर्टेमिस से सिर्फ सपने या कुछ और मिलता था और वे जाकर उसे फैलाते थे। लेकिन रोमन साम्राज्य के आसपास के यहूदी इफिसस के आर्टेमिस के बारे में जानते थे। यह एक प्रसिद्ध देवता थे। लेकिन जो चीज वास्तव में दंगे को भड़काती है उसमें अर्थशास्त्र और आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। डेमेट्रियस यहां अपने साथी कारीगरों को एक साथ बुलाता है। ल्यूक द्वारा उसे एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। प्राचीन साहित्य में डेमोगॉग्स को बहुत खराब नजर से देखा जाता था खासकर रोमन साम्राज्य में, जब भीड़ भड़काने वाले लोगों, दंगे भड़काने वाले लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता था। डेमेट्रियस यहाँ एक डेमोगॉग की तरह बोलता है। उनके भाषण की लफ्फाजी बहुत लोकलुभावन है, जिसे प्राचीन काल में वक्ता बहुत ही हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन वह चांदी के मंदिरों का निर्माता था। अब पुरातत्वविदों को जो मंदिर मिले हैं, उनमें से कई टेराकोटा आर्टेमिस के स्मारिका मंदिर हैं। अर्थात उन्हें एक प्रकार की स्मारिका के रूप में आर्टेमिस के वास्तविक मंदिर के अनुरूप बनाया गया था, जिसे पर्यटक अपने साथ ले जा सकते थे और तीर्थयात्री अपने साथ ले जा सकते थे। परंतु चांदी अधिक प्रतिष्ठित थी, इसलिए तीर्थों के निर्माताओं में से वह तीर्थों के विशिष्ट निर्माताओं में से हैं। लेकिन वह अभी भी एक कार्यकर्ता है। वह एक चांदी का कारीगर हो सकता है, जो कारीगरों के सबसे सम्मानित वर्ग में से एक था, लेकिन वह अभी भी एक कारीगर है। इसलिए वह स्वयं अभिजात्य वर्ग का हिस्सा नहीं है। जब वह इसी तरह के व्यापार की बात करता है, तो हो सकता है कि मंदिर बनाने में अन्य लोग भी शामिल रहे हों। हो सकता है कि इसे बनाने में अन्य लोग भी शामिल रहे हों, हो सकता है कि अन्य लोग भी धातु बनाने वाले रहे हों। हमारे पास प्राचीन काल की आर्टेमिस की बहुत सारी सोने और चांदी की मूर्तियां हैं। तीर्थस्थलों के अलावा हमारे पास 1.4 से 3.2 किलोग्राम की मूर्तियां भी हैं। खैर, आर्थिक मुद्दे काफी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, यहां तक कि रोम में भी, जहां वे मिस्र में भारी मात्रा में अनाज का आयात करते थे, जहां बहुत सारा अनाज उगाया जाता था, बच्चे अक्सर भूखे रह जाते थे। यहां तक कि रोम में भी, जहां उन्होंने हर किसी को खुश रखने और चीजों को स्थिर रखने की कोशिश की, खासकर साम्राज्य के केंद्र में, कभी कभी अनाज के दंगे होते थे। खैर, यहां अर्थशास्त्र शामिल है। इन चांदी के मंदिरों को बनाने से ही उनकी आजीविका चलती है, और हम इस समय इफिसुस में आर्थिक समस्याओं के कारण परेशानी के अन्य उदाहरणों के बारे में भी जानते हैं। वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आर्टेमिस के मंदिर से कुछ धन का दुरुपयोग किया, जिसके पास विशाल संपत्ति थी, और यहां वर्णित घटनाओं से कुछ साल पहले ही यह एक बड़ा घोटाला बन गया था। इसलिए हमारे यहां जो कुछ भी है, उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है, और यह पुरातनता के बारे में हमारी जानकारी से मेल खाता है। यह दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों के बारे में हमारी जानकारी से मेल खाता है। अधिनियम अध्याय 16, याद रखें कि पॉल और सीलास को क्यों गिरफ्तार किया गया और पीटा गया, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के अर्थशास्त्र के साथ खिलवाड़ किया जो पाइथोनिस्टों की भावना से बोल रहा था। उन्होंने बुतपरस्त धर्म के अर्थशास्त्र के साथ खिलवाड़ किया, और यह यहां सच है। ऐसा कई अन्य स्थानों पर हुआ है। ऐसा एक बार हुआ जब मैं एक स्ट्रीट मिशन में काम करता था, जहां हम सड़क पर लोगों के साथ काम करते थे और सड़क पर लोगों की मदद करते थे और उन्हें खाना खिलाते थे वगैरह। और एक क्षेत्र जहां हम थे, वहां एक ऐसी जगह थी जो यौन प्रथाओं से संबंधित थी, जो बाइबल में निषिद्ध हैं, और वे शिकायत कर रहे थे कि हम उनके बहुत करीब हैं और इसलिए उनके ग्राहकों और उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इसलिए उनके आर्थिक प्रभाव के कारण, और क्योंकि हम लोगों को मुफ्त में मदद कर रहे थे, हमें शहर में दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। खैर, लोग इफिसुस के आर्टेमिस के प्रति बहुत वफादार थे। मेरा मतलब है, यह उनकी नागरिक निष्ठा का हिस्सा था। उस समय नागरिक निष्ठा एक बड़ी बात थी। यह राष्ट्रवाद जैसा था। और जब आप देशभक्ति जैसी कोई बात छेड़ेंगे, तो दंगे आसानी से फैल जाएंगे। विशेष रूप से प्राचीन शहरी समाज की घनिष्ठता और सार्वजनिक संरचना को देखते हुए बात तेजी से फैल गई। व्यापार संघ एक ऐसा स्थान था जहां वे शीघ्रता से यात्रा कर सकते थे और भीड़ थिएटर में खत्म हो जाती है। अब दो स्थान हैं जो उन अवशेषों के आधार पर सुझाए गए हैं जो पाए गए हैं कि डेमेट्रियस कहां रहा होगा या जिस गिल्ड को वह संबोधित कर रहा था वह कहां रहा होगा। एक अर्काडियस स्ट्रीट पर है या जिसे बाद में अर्काडियस स्ट्रीट के नाम से जाना जाने लगा, जो वह सड़क है जो बंदरगाह से सीधे थिएटर तक जाती है। दूसरा बाजार से थोड़ा करीब है जो थिएटर के ठीक बगल में है। किसी भी स्थिति में जब वे उत्तेजित हो गए तो उनके पास जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं था। बाजार थिएटर के ठीक बगल में था। यह लोगों से भरा होगा। तो आप बाजार में जाते हैं और ये बातें चिल्लाना शुरू कर देते हैं, आप बहुत तेजी से दंगा भड़का सकते हैं। और थिएटर में वे बहुत जल्दी जा सकते थे। थिएटर बहुत बड़ा था। आप इसे बंदरगाह से देख सकते हैं। वास्तव में आप इसे अभी भी वहां से देख सकते हैं जहां बंदरगाह था। आप इसे आज भी वहां से देख सकते हैं। इसमें बैठने की क्षमता 20,000 से अधिक थी। कभी कभी हमने 25,000 कहा है, लेकिन यह वास्तव में पहली शताब्दी के बाद के कुछ विस्तार के बाद था। तो इस बिंदु पर यह अभी 25,000 नहीं बल्कि 20,000 से अधिक हो सकता है, जो बताता है कि इस समय इफिसस की जनसंख्या 2,00,000 के आसपास रही होगी। लेकिन यह भीड़ भरे बाजार के ठीक सामने था। थिएटर का उपयोग नागरिक सभाओं, नियमित नागरिक सभाओं के लिए किया जाता था जो नियमित समय पर मिलती थीं, और कभी कभी अनियमित नागरिक सभाओं के लिए जहां कोई सिर्फ बैठक बुला सकता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग इफिसस के रंगमंच की ओर दौड़ रहे हैं। हम इफिसस के बारे में इफिसियन शिलालेखों से बहुत कुछ जानते हैं जो बड़ी संख्या में इफिसियन शिलालेखों में प्रकाशित हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर थिएटर में भाग रहे कुछ लोगों को लगता है कि यह एक अनियमित सभा है जिसे किसी मुद्दे से निपटने के लिए बुलाया गया है। उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह सिर्फ एक भीड़ है। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। दंगे के दौरान अधिनियम अध्याय 21 की तरह जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपकी अलग अलग राय है। जब कोई दंगा होता है तो कभी कभी ऐसा ही होता है। कुछ लोग ऐसे हैं और उन्हें इसके पीछे के वास्तविक मुद्दों की गलतफहमी है। श्लोक 31 में एशियार्क पॉल के शिष्य नहीं चाहते थे कि वह थिएटर में जाए और विशेष रूप से एशियावासी नहीं चाहते थे कि वह अंदर जाए। डेमेट्रियस पॉल को ढूंढने में सक्षम नहीं था, लेकिन उन्होंने पॉल के कुछ साथियों को पकड़ लिया था और उन पर आरोप लगाने के लिए उन्हें थिएटर में खींच लिया। एशियार्क थे, उनमें से कई एशिया में शाही पंथ के पुजारी थे। ऐसा नहीं है कि एशियार्क स्वचालित रूप से वही थे, लेकिन वे एक ही समूह से लिए गए थे, वही विशिष्ट लोग जो अक्सर बड़े दान करते थे और इसी तरह। इफिसस में सम्राट पंथ एक प्रमुख मुद्दा था। ऑगस्टस के बाद से यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। उन्हें एशिया माइनर का पहला शाही मंदिर इफिसस में मिला। खैर, ये एशियार्क्स पॉल के दोस्त क्यों थे? प्राचीन काल में दोस्तों का मतलब अलग अलग हो सकता था। आपके ऐसे दोस्त थे जो हमउम्र थे। आम तौर पर इसका ग्रीक आदर्श यह था कि आप साझा विश्वास रखते थे। आप एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं या एक दूसरे के साथ मरने को भी तैयार हो सकते हैं। आपने सभी बातें समान रूप से साझा की। वह यूनानी आदर्श था, लेकिन यह एक व्यंजना भी बन गया, विशेष रूप से रोमन संस्कृति में, बल्कि ग्रीक संस्कृति में भी, संरक्षकों और ग्राहकों के लिए, ग्रीक दुनिया में उपकारकों और उनके आश्रितों के लिए। ठीक है, एशियाइयों को जिस तरह से सम्मान मिला और शिलालेख उन्हें समर्पित किए गए उसका एक हिस्सा सार्वजनिक कार्यों के लिए उनका दान था। लेकिन वे भी हो सकते हैं जिन्हें हम आज कभी कभी कला के संरक्षक या शिक्षा के संरक्षक कहते हैं। उन्होंने जनता की भलाई के लिए चीजों को प्रायोजित किया। खैर, यहाँ पॉल है, वह एक लोकप्रिय शिक्षक हैं। अपने लिए सम्मान पाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि इस लोकप्रिय शिक्षक को प्रायोजित करने में मदद की जाए जिसे बहुत पसंद किया जाता है। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, चमत्कार हो रहे हैं। अरे, हम इसमें हैं और उसे प्रायोजित करके हमें सम्मान मिलता है। खैर, अगर अचानक उसके बारे में कोई घोटाला हो जाए तो क्या होगा? आप उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। या यदि आप जानते हैं कि यह एक झूठा घोटाला है तो कम से कम आप पर्दे के पीछे से काम करना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि इसे पॉल के साथ यथासंभव कम से कम जोड़ा जाए। तो आप जानते हैं कि यह दंगा चल रहा है। आप कहते हैं, ठीक है, हम इसे पर्दे के पीछे से संभाल लेंगे। पॉल, कृपया वहां मत जाओ। अब हम जानते हैं कि पॉल को खतरे की स्थिति में भी प्रचार करना पसंद था। प्रेरितों के काम अध्याय 21 में मंदिर में दंगा हुआ है। रोमन उसे बाहर ले जाते हैं और वह लोगों से बात करना चाहता है, भले ही इससे दंगा फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ वह ऐसा नहीं करता क्योंकि यहाँ, ठीक है, आप जानते हैं, इन एशियाइयों ने उसके लिए खुद को दांव पर लगा दिया है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में उनका कुछ न कुछ ऋण अवश्य है, और इसलिए उनके लिए शर्मिंदगी से बचने के लिए शायद वह तब अंदर नहीं जाता जब एशियाइयों ने श्लोक 31 में उससे अंदर न जाने का अनुरोध किया। लेकिन इस बारे में सोचें, यहां वे लोग थे जो बुतपरस्त समाज में नेता थे। निस्संदेह वे ईसाई नहीं थे। ठीक है, शायद उनमें से एक या दो ईसाई बन गए, हालांकि आप सोचेंगे कि ल्यूक इसका उल्लेख करना चाहेगा यदि उसे यह पता होता जैसा कि उसने सर्जियस पॉलस के साथ किया था। लेकिन आप सोचिए कि पॉल लोगों से कैसे जुड़ा था। पॉल ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। डेमेट्रियस ने इसी की निंदा की है कि वह इफिसुस के आर्टेमिस के खिलाफ प्रचार कर रहा है। खैर, जाहिरा तौर पर वह विशेष रूप से किसी भगवान के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहा था। वह सिर्फ यह उपदेश दे रहा था कि सच्चा ईश्वर एक है और इसलिए आपको अन्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। लेकिन वह विशेष रूप से इफिसस के आर्टेमिस के खिलाफ नहीं बोल रहा था। लेकिन किसी भी मामले में एक एकेश्वरवादी के लिए, आप जानते हैं, वह उन लोगों से संबंध बनाने का अच्छा काम कर रहा है जो उससे सहमत नहीं हैं। और यह उन समाजों में हमारे लिए एक अच्छा मॉडल है जो पूरी तरह से ईसाई नहीं है, जिसका मतलब है कि वस्तुतः हर समाज, क्योंकि कोई भी समाज वास्तव में सभी लोग यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। वह यहाँ हमें अलगाववादी होने का नहीं बल्कि संस्कृति के साथ जुड़ने और संस्कृति तक पहुँचने का मॉडल देते हैं। अब रहस्योद्घाटन में आपके पास जो कुछ है वह थोड़ा अलग है। यूहन्ना 15:18-25 में आप जो बात करते हैं कि दुनिया आपसे नफरत करती है, वह थोड़ी अलग है क्योंकि वे एक अलग तरह की सामाजिक स्थिति को संबोधित कर रहे हैं। जब आप उत्पीड़न में होते हैं, जब आपको सताया जा रहा होता है, तो रेखाएं अधिक स्पष्ट रूप से खींची जाती हैं। और हम इसे यीशु के साथ भी देखते हैं। मेरा मतलब है, यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ खाना खाने को तैयार है। परंतु जब वह महसूल लेने वालों और पापियों के साथ भोजन कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? खैर, जब भी हम सुनते हैं कि वह क्या कर रहा है, तो यह कहता है कि वे उसे खुशी से सुन रहे थे। वह उनके साथ राज्य का शुभ समाचार बांट रहा था। इसलिए हम दुनिया के मित्र नहीं हैं, इसलिए हम गरीबों की देखभाल करने के बजाय यौन अनैतिकता, भौतिकवाद या इस तरह की चीजों जैसे दुनिया के मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। हम दुनिया में आशा और प्रकाश, सच्चाई और शांति, अच्छी चीजें लाने के लिए हैं। हम वहां दुनिया पर अच्छाई का प्रभाव डालने के लिए हैं, दुनिया की बुरी चीजों से प्रभावित होने के लिए नहीं, और यह कहने के लिए नहीं कि दुनिया में हर चीज बुरी है। लेकिन हम नए नियम के विभिन्न भागों में अलग अलग दृष्टिकोण देखते हैं। कभी कभी लोग केवल एक या दूसरे का पक्ष लेते हैं, और हमें इस बात के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि समय क्या है और वे क्या चाहते हैं। पॉल के लिए मंत्री बनने का यह एक अद्भुत अवसर था, लेकिन यह अवसर शीघ्र ही समाप्त हो रहा है। खैर, शहर का क्लर्क उठता है और उन लोगों को संबोधित करता है जो थिएटर में आए हैं और एक मंत्र का जाप कर रहे हैं जो अक्सर प्राचीन देवताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वे बस यही कह रहे थे, इफिसुस की अर्तिमिस महान है, और उसे बार बार दोहरा रहे थे। खैर, इस प्रकार के मंत्रों के बारे में हम प्राचीन काल से जानते हैं। यह देवी की जय जयकार करने का एक तरीका था। और शहर का क्लर्क अंदर आता है। ल्यूक हमें बताते हैं कि वहां मौजूद अधिकांश लोगों को यह भी नहीं पता था कि दंगा किस बारे में था। वे नहीं जानते थे कि इसका पॉल से कोई लेना देना है। शहर का क्लर्क अंदर आता है। वह ग्रामेट्स है जो कई जगहों पर सिर्फ एक मुशी था। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो लोगों को उनके कानूनी दस्तावेजों में मदद करता हो। परंतु इफिसुस में वह मुख्य अधिकारी की उपाधि थी। तो यह इफिसुस का मुख्य अधिकारी है। और जब वह थिएटर में मंच पर आता है तो भीड़ कुछ हद तक शांत हो जाती है। वैसे थिएटर में आर्टेमिस और अन्य चीजों की मूर्तियां थीं। यह समग्र रूप से इफिसस की तरह एक बुतपरस्त स्थल था। और जब वे उसे देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। यदि यह विधानसभा की अनियमित बैठक है तो फिर वही इसके प्रभारी हैं। और इसलिए यह अच्छा हुआ कि वे शांत हो गए, क्योंकि अन्यथा उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे वे नहीं सुन पाते। खैर, वे उसे कैसे सुन सकते थे? खैर, आम तौर पर थिएटर में आप लोगों को सुन सकते हैं। इसे ध्वनिकी के लिए बनाया गया था। उनके पास माइक्रोफोन नहीं थे। लेकिन अगर लोग शांत हो जाएं, तो उन्हें उसे सुनने में सक्षम होना चाहिए। वह अपनी आवाज पेश करने में सक्षम होंगे। अब वह बोलता है। और उसे इस बात का पता कैसे चला? वह कैसे जानता है कि डेमेट्रियस ने दंगा भड़काया था? खैर, शायद एशियाइयों ने, जो पॉल के संरक्षक हैं, पर्दे के पीछे से अपने सहकर्मी इस शहर के अधिकारी को खबर दी ताकि वह भीड़ को शांत कर सके। और वह स्पष्ट रूप से डेमेट्रियस को एक लोकतंत्रवादी के रूप में निंदा करता है। अब एक सम्मानित और शर्मनाक समाज में इसका मतलब है कि डेमेट्रियस शायद पलटवार करना चाहेगा। लेकिन शहर के क्लर्क ने कहा, अगर इससे निपटने की जरूरत है तो इसे अदालतों में निपटाया जाना चाहिए। तो शायद यही कारण है कि पॉल बाद में शहर में नहीं पहुंचता। लेकिन फिर भी वह श्लोक 39 और 40 में वैध सभाओं की बात करता है। इन चीजों को कानूनी सभा में निपटाए जाने की जरूरत है। उनका कहना है कि अदालतें खुली हैं, राज्यपाल यहां हैं। यह शायद एक समय था गवर्नर की हत्या के तुरंत बाद, जब उनके स्थान पर दो लोग काम कर रहे थे। लेकिन किसी भी मामले में इफिसस एक स्वतंत्र शहर था, जैसा कि हमने एथेंस और थिस्सलुनीके के बारे में कहा था। यह कोई उपनिवेश नहीं था, बल्कि यह अपनी सीनेट और विधानसभा के साथ एक स्वतंत्र शहर था। परंतु यह पूर्णतः रोमन सद्भावना पर निर्भर था। एक शहर के भीतर संघर्षों के कारण कभी कभी रोमन हस्तक्षेप होता था। आखिरकार प्रोकोंसल या संभवतः इस अवधि के दौरान प्रोकोंसल उनका मुख्यालय इफिसस शहर में था। तो आप वास्तव में गड़बड़ नहीं करना चाहते क्योंकि शहर विशेषाधिकार खो सकता है। और कभी कभी एशिया माइनर के कुछ यूनानी शहरों ने दंगों के कारण विशेषाधिकार खो दिए। खैर, ल्यूक जिस तरह से ल्यूक चीजों को बताता है वह मुझे पसंद है। वह उत्साहित है, वह सकारात्मक है, लेकिन वह यहूदी विरोधी दंगों पर जोसीफस की तरह है। जब यहूदियों के खिलाफ दंगे हुए, जोसीफस ने मिसालें बताईं, कानूनी मिसालें, जिनमें कहा गया, ठीक है, यहूदियों, यह उनकी गलती नहीं थी, ये उनके अधिकार हैं, उन पर प्राधिकारियों द्वारा जोर दिया गया है। और जोसेफस हमेशा यह दिखाने के लिए उत्सुक रहता है कि यहूदी समुदाय ने दंगों की शुरुआत नहीं की थी। अब ल्यूक को यह दिखाने में हमेशा परेशानी होती है कि पॉल वह नहीं है जिसने दंगे शुरू किए थे, और पॉल के बारे में हम जो जानते हैं उसे देखते हुए यह समझ में आता है, जिस पॉल ने पॉल की चिट्ठियां लिखीं उसने दंगे नहीं कराए होंगे। ऐसा कहने के बाद ल्यूक को इसे दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि पॉल के खिलाफ प्रमुख आरोपों में से एक क्या है, अधिनियम 24 और पद 5 में पॉल के खिलाफ प्रारंभिक आरोप। खैर, वह दंगे भड़काता फिरता है, इसलिए उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है जो एक गंभीर अपराध है। अब यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखें तो वहां अनेक दंगे हैं जहां पॉल जाता है। आपके पास प्रेरितों के काम अध्याय 13 में हैं और प्रेरितों के काम अध्याय 14 में आपके पास ये भीड़ के दृश्य हैं। उन दंगों की शुरुआत कौन करता है? खैर, ऐसा लगता है कि शहरों में अक्सर यहूदी समुदाय ही रहता है। अधिनियम अध्याय 19, यह इफिसुस में यहूदी समुदाय नहीं है। अधिनियम अध्याय 16 की तरह वहां यहूदी समुदाय नहीं है। 16 और 19 दोनों में ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉल एकेश्वरवादी है, इसीलिए उन पर बुतपरस्त स्रोतों से आरोप लगते हैं। लेकिन इफिसस में यहूदी समुदाय को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। पॉल मंच पर नहीं आता क्योंकि उससे ऐसा न करने का आग्रह किया गया है, लेकिन यहूदी समुदाय का कोई व्यक्ति उस आराधनालय से मंच लेता है जिसे पॉल ने विभाजित कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे आराधनालय यीशु में यहूदी विश्वासियों के रूप में पॉल के साथ चले गए थे, और आराधनालय के बाकी लोग जो पीछे रह गए थे उन्होंने अपने आप को पॉल से अलग करने की कोशिश करने के लिए अलेक्जेंडर को, जो आराधनालय का सदस्य था, आगे किया। भले ही पॉल पर एकेश्वरवाद का प्रचार करने और आर्टेमिस के खिलाफ उपदेश देने का आरोप है, वे इससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, वे नाव को हिलाना नहीं चाहते, यह उनका समुदाय है। लेकिन एक बार जब भीड़ को पता चलता है कि वह एक यहूदी है तो वे और भी चिल्लाते हैं, इफिसियों की आर्टेमिस महान है। और इसलिए स्थानीय यहूदी समुदाय को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है, भले ही उन्होंने यह दंगा शुरू नहीं किया हो। इसलिए प्रेरितों के काम अध्याय 21 में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह आराधनालय के इफिसुस के यहूदी होंगे जो पॉल पर एक इफिसियन गैर यहूदी ट्रोफिमस को अपने साथ मंदिर में ले जाने का आरोप लगाने जा रहे हैं, और उन्होंने वहां दंगा शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी पॉल ने वह दंगा शुरू नहीं किया, इसलिए इसे देखना और यह देखना महत्वपूर्ण है कि ल्यूक इसे इस तरह से क्यों विकसित कर रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में तर्क दिया था, यह सच्ची सामग्री होगी, लेकिन ल्यूक को सब कुछ शामिल करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि वह बहुत कुछ छोड़ देता है, तो इस जोर का एक कारण है। शहर के क्लर्क ने डेमेट्रियस को अपमानित किया, लेकिन एशियाइयों को संभवतः शर्मिंदा होना पड़ा, जो एक कारण हो सकता है कि पॉल ने प्रेरितों के काम अध्याय 20 और पद 16 में इफिसुस को दरकिनार कर दिया। कई टिप्पणीकारों, बेन विद्रिंगटन, मैंने और अन्य लोगों ने अक्सर यह तर्क दिया है। आंशिक रूप से इसका कारण यह है कि ल्यूक स्पष्ट रूप से समय बचाने के लिए इसे देता है। खैर, इससे पौलुस को इफिसुस की परिक्रमा करने का समय कैसे बचेगा जब उसे इफिसुस से मिलेतुस, जहां वह जाता है, बड़ों के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसका एक हिस्सा इस बात पर निर्भर हो सकता है कि उसका जहाज कहां यात्रा करने वाला था, लेकिन सबसे अधिक संभावना यह आतिथ्य दायित्वों के कारण समय बचाने के लिए थी। यदि आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहां आप लंबे समय से रहे हैं, तो आप जानते हैं हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि आप आएं। यदि आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे तो लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए जिन संस्कृतियों में ऐसा नहीं है, हम उससे उतने परिचित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो संस्कृतियां आतिथ्य के दायित्वों से परिचित हैं, वे इसे कुछ अधिक समझ सकती हैं। यदि आप शहर में हैं और आप उनसे मिलने के लिए नहीं रुकते हैं, तो लोग वास्तव में नाराज हो जाते हैं। और हमारे पास वह प्राचीन पत्र हैं जहां लोग कहते थे, ओह, मैंने सुना है कि आप 30 मील के भीतर आए और मुझसे मिलने नहीं आए, मुझे चोट लगी है। लेकिन एक कारण जो एक अतिरिक्त कारक हो सकता है जिसका ल्यूक ने उल्लेख नहीं किया है, वह यह है कि पॉल का उतना स्वागत नहीं किया गया था और पॉल के इफिसुस में आने से शायद चर्च को लाभ की बजाय अधिक नुकसान होता। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि एशियाई लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर चीजें धीमी रहीं तो यह सबके लिए बेहतर था। इसलिए पॉल इस समय व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं आते हैं। हालांकि वह अपने संदेश में जो कहने जा रहा है वह यह है कि आप मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे। अधिनियम अध्याय 20, हमारे पहले कुछ छंदों में हम पॉल को फिर से अखाया की यात्रा करते हुए उनके साथ सर्दियों में बिताते हुए देखते हैं, और रोमियो को पत्र वहीं से लिखा गया था इत्यादि। लेकिन साथ ही हम यूतुखुस की कहानी पर आते हैं, जब वे फिलिप्पी पहुंचते हैं, मूड फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए ल्यूक कई वर्षों के बाद उनके साथ फिर से जुड़ता है और फिर वे 6 दिनों के लिए यात्रा करते हैं। फिलिपी के बंदरगाह शहर नेपोलिस से त्रोआस तक यात्रा करने से पहले उनके पास 2 दिवसीय यात्रा के लिए अनुकूल हवाएं नहीं थीं, और वह वहां त्रोआस में विश्वासियों से बात कर रहा है और उनके पास जाहिर तौर पर रविवार की शाम की बैठक है। चाहे शनिवार की शाम हो या रविवार की शाम, इसमें कुछ विवाद है। मुझे लगता है कि सारे सबूत शायद रविवार की शाम की बैठक में फिट बैठते हैं जो पूरी रात चलती है। खैर, क्या यह पूरी रात रविवार की बैठकें आयोजित करने की एक मिसाल है? शायद नहीं। संभवत इस रविवार की बैठक पूरी रात आयोजित करने का कारण यह था, जैसा कि पाठ में कहा गया है, पॉल अगले दिन जा रहा था। इसलिए यदि वह सामान के बारे में उनसे बात करना चाहता है, तो उसे एक ऑलनाइटर खींचना होगा और उन्हें उसका संदेश सुनने के लिए एक ऑलनाइटर खींचना होगा। ठीक है, जैसा यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। तो यहीं पर यूतुखुस सो जाता है। छात्रों का अपने शिक्षकों के ऊपर सो जाना बुरी बात मानी जाती थी। कभी कभी शिक्षक सचमुच विद्यार्थियों को जगाने के लिए उन पर अपनी किताबें फेंक देते थे। हमारे पास प्राचीन काल से इसकी रिपोर्टें हैं। लेकिन वह खिड़की में चला जाता है। अब खिड़कियां अक्सर काफी बड़ी होती थीं। रात चलती है। खैर, क्या यह पूरी रात रविवार की बैठकें आयोजित करने की एक मिसाल है? शायद नहीं। यह अपने आप को एक छोटी सी खिड़की के नीचे दबाने जैसा नहीं है। यह अक्सर काफी बड़ा होता था, विशेषकर दीवार पर ऊंची खिड़कियां। मैंने प्राचीन वास्तुकला पर कुछ अध्ययन किया यह देखने के लिए कि ये खिड़कियां कैसी थीं, कई स्रोतों का अध्ययन किया। आमतौर पर इस अवधि में बहुत कम खिड़कियों में शीशे लगे होते थे। कांच का अस्तित्व तो था, लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग खिड़कियों के लिए नहीं किया जाता था। इसलिए इस अवधि में विंडोज में यह बहुत दुर्लभ था। लोगों के पास कभी कभी लकड़ी के शटर या पर्दे या कुछ और होता है, जिसे वे वर्ष के निश्चित समय पर खोलते हैं और वर्ष के निश्चित समय पर बंद कर देते हैं। लेकिन संभवतः यह एक बड़ी खिड़की थी। वह खिड़की पर क्यों बैठा है और क्यों सो रहा है? यह कभी कभी इस प्रश्न से जुड़ा होता है कि ल्यूक ने दीवटों का उल्लेख क्यों किया है। खैर, कुछ लोग कहते हैं कि शायद दीवट यह दिखाने के लिए हैं कि यह कोई विध्वंसक बैठक नहीं थी, क्योंकि उनमें वास्तव में रोशनी थी, वे अंधेरे में नहीं मिल रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि तेल की गंध या तेल की गर्मी से उसे नींद आ जाएगी, और मेरे मित्र जो तेल की बहुत अधिक गंध लेते हैं कहते हैं कि उन पर इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर एक ने कहा, हाँ, इसका मुझ पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन किसी भी मामले में तेल की गंध या गर्मी ने उससे दूर रहने के लिए खिड़की की सीट को वांछनीय बना दिया होगा। हालांकि साल के इस समय में मुझे भरोसा नहीं है, मौसम ऐसा हो सकता था। लेकिन शायद बात बस इतनी सी है कि प्रकाश उपलब्ध होने के बावजूद वह सो गया। किसी भी स्थिति में वह खिड़की से बाहर गिर जाता है और पॉल नीचे जाता है और उसे कुछ ऐसी भाषा में उठाता है जो याद दिलाती है, आप जानते हैं, उस पर गिरते हुए एलिजा और एलिशा की याद दिलाते हुए, लोगों को उठाते हुए। अब यह भी सामग्री में है। तो हमारे यहाँ एक सभा है जहाँ ल्यूक स्वयं एक गवाह है। युवक को जिंदा उठा लिया गया है। इससे यह संकेत नहीं मिलता कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। इससे यह संकेत नहीं मिलता कि उसे थोड़ा चक्कर या कुछ और जैसा नहीं था। लेकिन किसी भी मामले में वह जीवित है और ठीक है, जैसा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करने वाला था, खासकर जिस तरह से वह उतरा। हमारे पास प्राचीन काल में लोगों के चीजों से गिरने और उनकी गर्दन टूटने आदि की अन्य रिपोर्टें भी हैं। और फिर पॉल क्या करता है? क्या वह कहता है, ठीक है, वह मेरे उपदेश के दौरान सो गया? यह उबाव होना चाहिए, सब लोग घर जाओ। नहीं, वह खत्म कर देता है। वह पूरी रात जाता है और फिर वे एक साथ खाना खाते हैं और फिर एक साथ रोटी तोड़ते हैं, और उनकी यात्राएं बहुत दिलचस्प हैं। और मैं अध्याय 20 में उन सभी स्थानों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जहां उन्होंने यात्रा की थी, भले ही मैं अपनी टिप्पणी में उनके बारे में अधिक चर्चा करता हूं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख अध्याय 21 में करूंगा। नवीनतम पर विदाई भाषण देता है। विदाई भाषण वास्तव में प्राचीन काल में भाषणों की एक श्रेणी थी। वास्तव में यहूदी साहित्य में वे अक्सर वसीयतनामा होते थे जब कोई मरने वाला होता था। लेकिन सामान्य तौर पर प्राचीन साहित्य में आपके पास अक्सर विदाई भाषण होते थे। इन छंदों में 18 से 35 तक पॉल इफिसुस के बुजुर्गों को संबोधित कर रहा है जिन्हें बहुत जल्दी इकट्ठा होना था, सब कुछ छोड़ देना था और मिलेतुस में उससे मिलने आना था। और पॉल के पत्रों के साथ कई समानताएं हैं, यहां तक कि शब्दों में भी। वास्तव में इस पर स्टीव वाल्टन का एक संपूर्ण मोनोग्राफ था। ऐसे कई अन्य कार्य हैं जिनमें इनका उल्लेख है। स्टीव वाल्टन केवल एक और दो थिस्सलुनीकियों के साथ समानता का उल्लेख कर रहे थे जो कि पॉल के बीच में थे। ठीक है, एक थिस्सलुनीकियों शायद पॉल का सबसे प्रारंभिक पत्र, यदि उनका प्रारंभिक नहीं तो उनका दूसरा सबसे प्रारंभिक पत्र। और अन्य लोगों ने अन्य पॉलिन पत्रों के साथ समानताएं देखी हैं, बहुत सारी समानताएं। हमने पुराने नियम में पढ़ा है कि पॉल बड़ों को संबोधित कर रहा है। वह उनके बारे में पर्यवेक्षकों के रूप में बात करता है और कैसे भगवान ने उन्हें चरवाहा बनाया है। हमारे पास टाइटस अध्याय एक में इन शब्दों के बीच समान संबंध है और विशेष रूप से एक पत्रस अध्याय पांच में चरवाहों को शामिल करते हुए। इसलिए पहली शताब्दी में ऐसा प्रतीत होता है कि चर्च के बुजुर्ग भी पर्यवेक्षक थे, एपिस्कोपोई, जो एक ऐसी भाषा है जिसका बाद में उपयोग किया जाने लगा। जब तक आप इग्नाटियस पहुंचते हैं तब तक इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन्हें हम बिशप कहते हैं। तो यह बहुत तेजी से विकसित हुआ, लेकिन इस अवधि में ये अभी भी पर्यवेक्षक थे, शायद स्थानीय चर्च। प्रतिस्थानीय चर्च में उनके पास एकाधिक हो सकते हैं, भले ही हम कुछ अन्य पाठ सही ढंग से पढ़ रहे हों। और वे चरवाहे भी थे, वे पादरी भी थे। पादरी लैटिन में चरवाहा के लिए है, ग्रीक में पोइमी। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के नेताओं को अक्सर चरवाहा कहा जाता था। जहां तक सुमेरियन साहित्य की बात है तो शेफर्ड अक्सर नेताओं के लिए एक रूपक रहा है, यहां तक कि राजाओं के लिए भी। यह होमर अगामेमोन, जो आचेंस के राजा के रूप में अपने लोगों का चरवाहा था, में हर जगह मौजूद है। तो किसी भी मामले में ये वे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, और यीशु की शिक्षा में ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें झुंड पर प्रभुता करनी है। ये वे लोग हैं जिन्हें झुंड की सेवा करनी है और उन्हें झुंड की देखभाल करनी है। और पॉल ने स्वयं को उनके लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, जो नैतिकतावादी और दार्शनिक अक्सर करते थे। वह पद 26 में कहते हैं, घर घर और बड़ी सभाओं में दिन रात लोगों की सेवा करने के बारे में बात करने के बाद वे पद 26 में कहते हैं, मैं सभी लोगों के खून के प्रति निर्दोष हूँ। ठीक है, यह यहेजकेल 33 श्लोक 8 और 9, यहेजकेल 3, लेकिन यहेजकेल 33 जैसा लगता है। और फिर वह श्लोक 28 में चरवाहों के बारे में बात करता है, शायद यहेजकेल 34 का उदाहरण दे रहा है, जो बताता है कि भले ही ल्यूक सब कुछ नहीं बताता है, कनेक्शन ल्यूक विस्तार में नहीं जाता है। ल्यूक को पॉल द्वारा दिया गया एक वास्तविक भाषण याद आ रहा है, और पॉल वास्तव में यहेजकेल के किसी धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहा है। श्लोक 29 में भी आप जानते हैं, आपके चरवाहों, आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आपके ही बीच से भेड़िये पैदा होंगे। खैर, ल्यूक 10 और श्लोक 3 में यीशु ने चेतावनी दी है कि वह अपने शिष्यों को भेड़ियों के बीच मेनों के रूप में भेज रहा है। लेकिन यहाँ अधिनियम 20 श्लोक 29 में हम देखते हैं कि भेड़िये उनके बीच आएंगे, भेड़ के बच्चों के बीच आएंगे, भेड़ों के बीच आएंगे। इफिसुस में झूठी शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई, जैसा कि हम बाद में और कई अन्य स्थानों पर भी देखते हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर हमें वास्तव में नजर रखने की जरूरत है। अब हम छोटी छोटी बातों पर मतभेद रखने वाले लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है, समय के साथ वे चीजें बढ़ सकती हैं और बदतर हो सकती हैं। हम यथासंभव सटीक होना चाहते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर संगति नहीं तोड़ते। लेकिन जब आपके पास कोई गंभीर झूठी शिक्षा हो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब लोग भेड़ियों की तरह हो जाते हैं, यानी अपने स्वार्थ के लिए भेड़ों का शोषण करने लगते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। पॉल ने प्राचीनों को नियुक्त किया है, या शायद आप जानते हैं, इफिसुस में वे अब इतने परिपक्व हो गए हैं कि वे अपने स्वयं के कुछ बुजुर्गों को नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन यह बहुत गंभीर हो सकता है, हमें सावधान रहना होगा। और कभी कभी मेरा मतलब है, ऐसे लोग मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैंने वर्षों पहले शुरुआत की थी, जो प्रभु की सेवा कर रहे थे। मेरा मतलब है, जो लोग उस समय भगवान की सेवा कर रहे थे, उनमें से अधिकांश अभी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मंत्रालय में मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं जो दूर हो गए हैं, और उनमें से कुछ शत्रुतापूर्ण नहीं हैं। मेरा मतलब है, वे अभी भी हैं। मेरा मतलब है, वे ईसाइयों से प्यार करते हैं। वे बस, लेकिन फिर ऐसे अन्य लोग भी हैं जो वास्तव में गलत रास्ते पर चले गए, और इसलिए पॉल इसके विरुद्ध चेतावनी देता है। और हम भेड़ों को इससे नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते, हमें भेड़ों की रक्षा करनी है। पवित्र आत्मा गवाही देता है, यह कहता है, हर शहर में जो यरूशलेम में उसके लिए खतरा है, और उनका कहना है कि यह उनके त्याग ईश्वर के लोगों के लिए कष्ट सहने को तैयार रहने के उदाहरण का हिस्सा है। वह कहते हैं, भले ही पवित्र आत्मा हर शहर में इसकी गवाही देता है, मैं वहां जाने के लिए दृढ़ हूं, क्योंकि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉल उसकी बुलाहट से प्रेरित था। आप जानते हैं, जब यह आपके अंदर जलता है तो आप इसे करने जा रहे हैं, और कुछ भी आपको रोकने वाला नहीं है। आप इसके साथ लोगों को कुचलना नहीं चाहेंगे। पौलुस और बरनबास को याद करो। लेकिन पॉल अपनी बुलाहट को पूरा करने जा रहा है, कुछ भी उसे रोकने वाला नहीं है, यहां तक कि मृत्यु भी। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? पवित्र आत्मा हर नगर में उसकी गवाही देता है। खैर, शायद भविष्यवाणी की भावना। हमें इसके उदाहरण मिलते हैं कि इसके बाद जब वह सोर जाता है और जब वह कैसरिया में रुकता है, तो उसे इस तरह की भविष्यवाणियां मिल रही हैं। टायर में भविष्यवाणी बस इतना कहती है कि उन्होंने आत्मा के माध्यम से उससे कहा कि उसे नहीं जाना चाहिए। और पद 11 में कैसरिया में यह बहुत स्पष्ट है कि उसके साथ क्या होने वाला है, जो संभवतः सोर में भी जो हुआ उसका सार है। किसी भी मामले में बहुत सारी दयनीयता है। कुछ लोग ऐसे थे जो यह नहीं मानते थे कि आपको बोलने में करुणा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अधिकांश वक्ताओं ने इसे स्वीकार किया। और मेरा मतलब है, कुछ चीजें भावनाएं, करुणा और अक्सर सहानुभूति पैदा करती हैं। इसका उपयोग अक्सर प्रतिवादी द्वारा बोलने में किया जाता था, और इसका उपयोग अन्य तरीकों से भी किया जाता था। परंतु पौलुस कहता है, मैंने आंसू बहा बहा कर तुम्हें समझाया। और जब तक उसने ऐसा किया, लोग रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे उसका चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगे। और पॉल के प्रति उनका स्नेह कुछ ऐसा संप्रेषित करता है जिसे ल्यूक केवल यह कहकर संप्रेषित नहीं कर सका। आप जानते हैं, पॉल एक महान व्यक्ति है। हर किसी को पॉल को पसंद करना चाहिए। खैर, आप देख सकते हैं कि लोग पॉल को कितना प्यार करते थे। कभी कभी उनकी अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर हम पॉल के पत्रों में कुछ चीजें ले सकते हैं जहां उसे दृढ़ रहना पड़ता है और अन्य चीजों को छोड़ना पड़ता है। पॉल के पत्र देहाती चिंता और प्रेम से भरे हुए हैं। और हां, कभी कभी वह दृढ़ होता है, लेकिन उसकी अधिकांश दृढ़ता प्रेम के कारण, लोगों की देखभाल के कारण होती है। हे पहले थिस्सलुनीकियो, हम तुम्हारे लिए अपना प्राण दे देते। जैसे एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह। और पॉल उस तरह का व्यक्ति था, जो अपने बुलावे से प्रेरित था, लेकिन एक लोगों से जुड़ा व्यक्ति था। मुझे नहीं पता कि वह बहिर्मुखी था या अंतर्मुखी। वह संभवतः बहिर्मुखी था। मुझे लगता है कि मुझे जानना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अंतर्मुखी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेरित जॉन शायद अंतर्मुखी थे। तो हम बिल्कुल ठीक हैं। पीटर निश्चित रूप से अंतर्मुखी था, लेकिन पॉल को लोगों से प्यार था। कुछ लोग उनसे असहमत थे, कुछ लोगों को वह पसंद नहीं आया, लेकिन जो लोग वास्तव में उसे जानते थे, आप उन्हें रोते हुए देखते हैं। आप उन्हें उसे चूमते हुए देख सकते हैं। अब उस समय चुंबन करने के तरीके को ध्यान में रखें। विभिन्न संस्कृतियां इसे अलग ढंग से करती हैं। आप कुछ पारंपरिक रूसी संस्कृति में होठों पर चुंबन कर सकते हैं और पारंपरिक फ्रांसीसी संस्कृति में गालों पर चुंबन कर सकते हैं। मेरी संस्कृति में इसे खराब स्वच्छता माना जाता है। मेरे अंतरिक्ष बुलबुले के करीब भी मत आना। लेकिन हम उन लोगों को गले लगा सकते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन किसी भी मामले में विभिन्न संस्कृतियां इसे अलग अलग तरीके से करती हैं। लेकिन प्राचीन भूमध्य सागरीय संस्कृति में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त या एक छात्र और एक शिक्षक और एक छात्र अक्सर चुंबन के साथ स्वागत करते थे। आप किसी बहुत सम्मानित व्यक्ति या अपने संरक्षक का अभिवादन कर सकते हैं। आप उनके हाथों को चूम सकते हैं। लेकिन आमतौर पर चुंबन होठों पर हल्का चुंबन था, भावुक चुंबन नहीं। वह प्रेमियों के लिए आरक्षित था। लेकिन बस होठों पर एक हल्का सा चुंबन। एक शिक्षक किसी छात्र को माथे पर चुंबन या कुछ और दे सकता है। लेकिन आमतौर पर परिवार के सदस्यों को होठों पर हल्का सा किस किया जाता है। और जब वे पॉल को विदा कर रहे थे तो संभवतः यहां यही चल रहा था। खैर, अगले सत्र में हम अध्याय 21 में जाएंगे और हम पॉल की कुछ यात्राओं, कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे और जब पॉल फिर से मुसीबत में पड़ने वाला है और यह इतनी जल्दी हल नहीं होगा। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह अधिनियम अध्याय 18 से 20 पर सत्र 20 है।